आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अदिति कुमारी है, मैं जयपुर से हूँ एंड आई एम डूइंग माय बीए फ्रॉम वेनेसली विद्यापीठ। और आज मैं आपको क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर 2 की एक्सरसाइजेस करवाऊंगी। तो जो चैप्टर 2 है, व्हाट इंडिया कैन टीच अस, जिसे मैक्स मिलर ने लिखा है, इसे हमने अपनी पिछली ऑडियो में समझा था। हमने इस चैप्टर में समझा और देखा था कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे देश को काफी महान बनाती हैं और मैक्स मिलर के शब्दों में पैराडाइज बनाती हैं, यानी जन्नत बनाती हैं। और आज हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो एक्टिविटी 1 की पहली एक्सरसाइज है टेक द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। यहाँ आपको सवाल दिए हुए हैं और उनके ऑप्शन दिए हैं और हमें सही जवाब को चुनना है। इन द राइटर्स व्यू, विच कंट्री इज बिस्टोर्ड विद ऑल द वेल्थ, पावर एंड ब्यूटी? ऑप्शन ए जर्मनी, बी इंडिया, सी सीरिया या डी नन ऑफ द अबव। राइटर के व्यू में ऐसा कौन सा देश है जिसके पास सब कुछ है, वेल्थ भी है, पावर भी है, ब्यूटी भी है, यानी धन भी है, शक्ति भी है और सुंदरता भी है। तो राइटर जो है मैक्स मिलर, उनके अनुसार ऐसा देश इंडिया है, यानी कि सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन बी इंडिया। अब दूसरा सवाल, Which one of the following is the main source of legends and parable? A. Vedic mythology, B. The book of the ring, C. Buddhism या D. All of the above। इनमें से कौन सी main source है legends और parables की? कहाँ से legends और parables जो हैं, जो कहानियाँ वगैरह हैं, वो उत्पन्न हुई हैं, वो ली गई हैं? तो इसके options है Vedic mythology या फिर The book of the ring या फिर Buddhism या फिर इन सब में से। तो इसका सही जवाब है Buddhism, जो कि है आपका ऑप्शन सी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू मिलर, व्हाट एवर डिसिप्लिन यू सिलेक्ट फॉर योर स्टडी, यू विल हैव टू गो टू ऑप्शन ए एथेंस, बी ब्रिटेन, सी इंडिया या डी जर्मनी। मैक्स मिलर के हिसाब से आप कोई भी डिसिप्लिन लो, कोई भी सब्जेक्ट लो पढ़ाई के लिए, आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाने की जरूरत है? तो ऑप्शन पहला है एथेंस जाने की जरूरत है, बी ब्रिटेन या सी इंडिया या फिर डी जर्मनी। तो इसका सही जवाब है इंडिया। आप कोई भी सब्जेक्ट लो, किसी की चीज के ऊपर भी आपको खोज करनी हो, पढ़ाई करनी हो, तो इंडिया आने की जरूरत है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस शुड नॉट एक्सीड 10-15 वर्ड्स ईच। अब ये जो सवाल है, इनके जवाब हमें 10-15 शब्दों में ही देने हैं। पहला सवाल है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ आवर लेजेंड्स एंड पैराबल। जो ऑथर है यानी मैक्स मिलर जो है, उनके हिसाब से लेजेंड्स और पैराबल्स कहाँ से आए हैं? तो ये इसका जवाब अभी हमने चूज द करेक्ट ऑप्शंस में भी देखा था। इसका सही जवाब है बुद्धिज्म, और ये जवाब आपको पेज नंबर 11 के नीचे से दूसरे पैरे में मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाई डज मैक्स मिलर कॉल इंडिया अ पैराडाइज ऑन अर्थ? मैक्स मिलर जो है वो भारत को पृथ्वी पर एक स्वर्ग क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब है क्योंकि जो हमारा देश है भारत, उसके पास वेल्थ, पावर, ब्यूटी सब कुछ है, यानी धन, शक्ति और सुंदरता सब है। और इसका जवाब जो है वो आपको पहले पैराग्राफ पे मिल जाएगा, पेज नंबर 10 के। इसके बाद आते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर टू डिफरेंट इंडियास? लेखक के अनुसार दो अलग अलग भारत कौन से हैं? तो इसका जवाब है, एक तो शहर वाला भारत और दूसरा जो ग्रामीण समुदायों का भारत है वो, यानी एक जो शहर वगैरह है और एक जो विलेज है, जो गांव है वो। तो लेखक के अनुसार ये दो अलग अलग भारत है। तो और इसका जो जवाब है वो आपको पैराग्राफ 3 पे मिल जाएगा, पेज नंबर 10 के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच इंडिया डज द ऑथर लुक टू इन व्हाट इंडिया कैन टीच अस? इस पार्ट में लेखक कौन से भारत की ओर देखते हैं? तो इसका जवाब है, इस चैप्टर में जो लेखक हैं वो विलेज कम्युनिटी वाले भारत को देखते हैं, जो गांव ये एरिया का भारत है, जो ग्रामीण समुदायों वाला भारत है उसकी ओर देखते हैं। और इसका जो सवाल है वो आपको तीसरे पैराग्राफ पे मिल जाएगा, पेज नंबर 10 के। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ऑन हूज थॉट्स यूरोपियंस हैव बीन नर्चर्ड? यूरोप के लोगों को पोषण किनके विचारों पर मिला है, विचारों पर हुआ है? तो इसका जो जवाब है वो है ग्रीक, रोमन और ज्यूइश। यूरोप के जो लोग हैं उनका पोषण ग्रीक, रोमन और ज्यूइश की विचारधाराओं पर, की विचारों पर हुआ है। अब अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस शुड नॉट एक्सीड 25-30 वर्ड्स। ये जो सवाल, इनका जो जवाब है वो 25-30 शब्दों से ज्यादा में नहीं होना चाहिए, मतलब 25-30 शब्दों में इसका जवाब देना है। व्हाट अपॉर्चुनिटीज डू वेरियस डिसिप्लिन ऑफर इन इंडिया फॉर इंटेलेक्चुअल वर्क? भारत में बौद्धिक कार्यों के लिए जो विभिन्न विषय हैं वो क्या अवसर देते हैं या क्या अवसर प्रदान करते हैं? तो इसका जो आंसर है वो आपको पेज नंबर 10 और 11 में मिल जाएगा, पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 दोनों में ही दिया हुआ है कि एक तो जियोलॉजी है, जो जियोलॉजी पढ़ना चाह रहा है जिसका जियोलॉजी विषय है वो हिमालय से लेके सीलन तक अपनी खोज कर सकता है। जो बॉटनी के लिए है वहाँ हमारे देश में फ्लोरा यानी फल फूल भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, एग्रीकल्चर बहुत है और पेड़ों वगैरह बहुत है हमारे यहाँ। फिर जो जियोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे हमारे यहाँ जंगल भी हैं, समुद्र भी हैं। और जो एथनोलॉजी में इंटरेस्टेड है या आर्कियोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो हमारे यहाँ एंशियंट विहार और कॉलेज वगैरह भी हैं। तो इसका जो जवाब है वो आपको 10 से 11 पेज नंबर में मिल जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट हैज द स्टडी ऑफ माइथोलॉजी अज्यूम्ड एन एंटायरली व्हाई हैज द स्टडी ऑफ माइथोलॉजी अज्यूम्ड एन एंटायरली न्यू कैरेक्टर? जो पुराण विद्या है उसने एक नया रूप क्यों अपनाया है? तो इसका जवाब है भारत की जो वैदिक माइथोलॉजी है उस पे प्रकाश पड़ने की वजह से। और इसका जो जवाब है वो आपको पेज नंबर 11 के नीचे से तीसरे पैराग्राफ में मिल जाएगा, नीचे से तीसरे पैराग्राफ में। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट मेक्स द राइटर थिंक दैट अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज प्रेजेंट बिटवीन इंडिया, सीरिया एंड पैलेस्टाइन? ऑथर जो है, जो राइटर है मैक्स मिलर, उनको ऐसा क्यों लगता है कि भारत, सीरिया और पैलेस्टीन के बीच में एक कम्युनिकेशन पहले से ही मौजूद था, उपस्थित था, एक माध्यम पहले से ही उपस्थित था? तो इसका जवाब है क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्कृत के शब्द हैं, ऐसे संस्कृत के वर्ड हैं जो कि बाइबल में भी हैं लेकिन हमारे यहाँ बहुत समय से चले आ रहे हैं। और इसका जवाब आपको पेज नंबर 11 के आखिरी पैराग्राफ में मिल जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द साइंस ऑफ लैंग्वेज कैन बी स्टडीड इन इंडिया? भाषा के विज्ञान से रिलेटेड से जुड़ी हुई ऐसी क्या समस्याएं हैं जो कि भारत में पढ़ी जा सकती हैं? तो इसका जवाब जो है वो होगा कि कई सारे भाषाओं में जो बोलने चलने में अंतर है और बोलचाल के साथ साथ उसका जो व्याकरण है, जो ग्रामर है, उसमें भी अंतर है, तो ऐसा सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है। इसलिए इसकी जो पढ़ाई है, इस विज्ञान की पढ़ाई भारत में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है। और इसका जवाब आपको पेज नंबर 12 के दूसरे पैराग्राफ में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। इंडिया कैन ऑफर अ लैबोरेटरी फॉर द डिसिप्लिन्स, व्हाट आर दे? भारत जो है वो एक प्रयोगशाला प्रदान कर सकती है, का प्रस्ताव दे सकती है, लेकिन ये जो विषय है वो क्या क्या है? तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 12 के आखिरी पैराग्राफ में मिल जाएगा, जो कि है पॉपुलर एडुकेशन, हायर एडुकेशन, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, फाइनेंस, इमिग्रेशन, पुअर लॉ। तो ये सब आपको पेज नंबर 12 के आखिरी पैराग्राफ में मिल जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 60-80 वर्ड्स ईच। अब इन सवालों का जवाब 60-80 शब्दों में देना है। पहला सवाल है, व्हाट आर मैक्स मुलर्स व्यू अबाउट संस्कृत लिटरेचर? मैक्स मुलर के संस्कृत को लेकर क्या व्यूज हैं, क्या विचारधाराएं हैं? तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 11 से 12 में मिल जाएगा कि संस्कृत जो है उसका जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, वो बहुत ही बड़ा है और अभी तक हमने उसे पूरी तरह से देखा नहीं है, पूरी तरह से जाना नहीं है। और जो संस्कृत भाषा है वो सोच का स्तर है और बहुत ही पुरानी भाषा भी है। तो यही सब चीजें हैं जो कि संस्कृत को बहुत ही अहम बनाती हैं। और इसका जवाब, ये जो पूरी चीजें हैं, ये आपको 11 से 12 पेज नंबर पे मिल जाएंगी। अगले सवाल पे आते हैं। What according to the writer have been the most important contributions of the Aryans of India? जो भारत के जो आर्यन लोग थे उन्होंने सबसे अहम भूमिका किस चीज में निभाई है, क्या उनकी अहम भूमिका रही है? तो ये इसका जवाब आपको पेज नंबर 13 के आखिरी पैराग्राफ में मिल जाएगा, जहाँ दिया हुआ है कि जो आर्यंस थे उन्होंने ही संस्कृत की भाषा को फ्रेम किया था, को बनाया था। तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह है कि उनकी भूमिका बहुत अहम थी, और इसके साथ साथ उन्होंने और भी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स वगैरह दिए थे, और रिलीजन यानी धर्म वगैरह के बारे में उन्होंने काफी कुछ कहा था, फिलॉसफी को लेके उन्होंने काफी सारे जो है लॉ बनाए थे, तो ये सब कानून बनाए थे। तो ये सब चीजें जो आपको पेज नंबर 13 पे मिल जाएगा, और 11 और 12 में भी कहीं कहीं दिया हुआ है, और पेज नंबर 13 के आखिरी पैराग्राफ में भी ज्यादा दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Say whether the following statements are true or false. Write T for true and F for false. अब यहाँ जो sentences दिए हुए हैं, जो वाक्य दिए हुए हैं, उसमें से बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो पहला है, In the writer's view, ट्रू इंडिया इज इन विलेजेस। जो मैक्स मिलर है उनके हिसाब से जो असली भारत है वो गांव में है। तो ये है ट्रू, ये सही है राइटर के हिसाब से, जो असली गांव है वो इंडिया है, वो गांव में ही बसा है। फिर अगला है, इंडिया अकॉर्डिंग टू द ऑथर हैज सॉल्यूशंस फॉर ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जो ऑथर है मैक्स मिलर, उनके हिसाब से जो इंडिया है उनके पास हर तरह का सॉल्यूशन है। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका भी होगा ट्रू। फिर अगले पे आते हैं, द अल्यूजन टू द फेबल ऑफ डोंकीज इन लायन स्किन व्हिच अकर्स इन प्लेटो वाज नॉट बोरोड फ्रॉम द ईस्ट इज द व्यू प्रेजेंटेड इन द लेसन। अब वो कहते हैं कि जो कहानी है कि गधे को शेर की स्किन में पाया गया था, शेर के शरीर में पाया गया था, जो कि प्लेटो की कहानियों में लिखी गई है, वो ईस्ट से नहीं ली गई है, ऐसा इस लेसन में, ऐसा इस पाठ में कहा गया है। तो ये है फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो ये इसलिए फॉल्स है। अब अगला है, द स्टडी ऑफ माइथोलॉजी हैज अज्यूम्ड एंटायरली न्यू कैरेक्टर चीफली बिकॉज ऑफ द लाइट थ्रोन ऑन इट बाय द एंशिएंट वेदिक माइथोलॉजी ऑफ इंडिया। जो माइथोलॉजी की जो पढ़ाई है उस पे वैदिक इंडिया की माइथोलॉजी का प्रकाश पड़ने की वजह से उसने एक नया रूप लिया है। तो हाँ, ये बात सच है, तो ये होगा ट्रू। अब पांचवा है, फेबल्स हैव ट्रैवल्ड थ्रू वेरियस चैनल्स एट वेरियस टाइम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। छोटी छोटी कहानियां जो हैं वो ईस्ट से लेके वेस्ट तक बहुत ही समय से ट्रैवल होते आ रही हैं, चलती आ रही हैं। तो ये जो है ये फॉल्स है, वेस्ट टू ईस्ट हुई है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं हुई है, तो ये फॉल्स है। अब अगले एक्टिविटी पे आते हैं, एक्टिविटी टू, वोकैबुलरी। एंथ्रोपोलॉजी इज अ सब ब्रांच ऑफ नॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजी। देयर आर नंबर ऑफ वर्ड्स एसोसिएटेड विद एंथ्रोपोलॉजी। सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज, एंथ्रोपो, एंथ्रोपोक्रेनेटिक, एंथ्रोपोइड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोमॉर्फिक। जो मानव विज्ञान है वो पुरातत्व विज्ञान के ज्ञान की एक उपशाखा है, यानी एंथ्रोपोलॉजी जो है, जो मानव विज्ञान है, वो आर्कियोलॉजी से ही निकल के आई है, उस पुरातत्व ज्ञान विज्ञान से ही निकल के आई है। और ऐसे काफी सारे शब्द हैं जो कि एंथ्रोपोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उसमें से कुछ शब्द यहाँ दिए हुए हैं, एंथ्रोपो, एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोइड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोमॉर्फिक। अब लुक अप द देयर मीनिंग्स इन द डिक्शनरी एंड कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस यूजिंग ईच वर्ड। ये जो सारे शब्द हैं इनका मतलब निकालना है और एक एक सेंटेंस इन शब्दों से बनाना है। तो यहाँ एंथ्रोपो है, तो एंथ्रोपो का मतलब होता है मानव से संबंधित। एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रो वर्ड जो है वो इसका प्रीफिक्स है, तो ये खुद में एक सेंटेंस बन सकता है कि एंथ्रोपो इज अ प्रीफिक्स इन एंथ्रोपोलॉजी। अब अगले पे आते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक यानी मानव केंद्रीय। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है मानव केंद्रीय, तो इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी इज एन एंथ्रोपोसेंट्रिक साइंस। मतलब एंथ्रोपोलॉजी है वो एक मानव केंद्रीय विज्ञान है। अगले पे आता है एंथ्रोपोइड, यानी जो कि मानव के शेप में, मानव के आकार में बना हो, मानव से मिलता जुलता हो आकार में। तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, मंकीज आर एंथ्रोपोइड, यानी जो मंकीज होते हैं, जो बंदर होते हैं, वो मानव के आकार के होते हैं। फिर अगला शब्द है आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है मानव विज्ञान या मानव विज्ञानी, मतलब जो बंदा एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करता है उसको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इसका हम वाक्य बना सकते हैं, एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मे बी अ गुड पर्सन। एक जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है वो हो सकता है कि एक अच्छा इंसान हो। फिर अगला हमारा आता है एंथ्रोपोमॉर्फिक यानी मानव रूपी। तो इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं, नो बींग इज एंथ्रोपोमॉर्फिक, यानी कोई भी लिविंग बींग, कोई भी जाति लिविंग बींग जो है, जो कि जीवित प्राणी, एंथ्रोपोमॉर्फिक नहीं है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, In the lesson, you have studied the words legend and myth have been used. The sentences given below use varied grammatical forms of these words. Identify them and the state meaning. तो यानी legend और myth जो शब्द है इनका इस chapter में बार बार use हुआ है, बार बार इस्तेमाल हुआ है, और नीचे कुछ sentences दिए हुए हैं जिनमें भी इनका इस्तेमाल हुआ है, तो हमें बस उसको पढ़ना है और उसका मतलब बताना है और उसकी grammatical form को समझना है। तो पहला sentence है, She was a legend in her own lifetime. वो अपने जीवन काल में एक लेजेंड थी। यहाँ पे जो लेजेंड है वो है एक फेमस पर्सन, यानी एक प्रसिद्ध व्यक्ति। फिर दूसरा है, लेजेंड हैज इट दैट द लेक वॉज फॉर्म्ड बाय द टीयर्स ऑफ गॉड। अब यहाँ पे लेजेंड का मतलब है प्राचीन कथा, तो प्राचीन कथा के अनुसार यहाँ जो लेक है वो भगवान के आंसुओं से बना था। फिर तीसरा है, हर पेशेंस एंड टैक्ट आर लेजेंडरी। उसका जो पेशेंस है और उसका जो व्यवहार है वो लेजेंडरी है। अब यहाँ पे जो लेजेंडरी है उसका मतलब वो सुप्रसिद्ध है, यानी बहुत ही काबिले तारीफ है। अब अगले पे चलते हैं। स्कॉट ऑफ द एंटार्क्टिक वॉज नेशनल हीरो ऑफ मिथिक प्रोपोर्शंस। जो स्कॉट था एंटार्क्टिक का, वो एक नेशनल हीरो था मिथिक प्रोपोर्शंस का। अब यहाँ जो मिथिक है उसका मतलब काल्पनिक है, यानी जो स्कॉट ऑफ एंटार्क्टिक था वो एक काल्पनिक हीरो था नेशनल प्रोपोर्शंस का, नेशनल हीरो था। अब अगले पे चलते हैं। द मिथिकल रिच अंकल दैट ही बोस्ट अबाउट। वो मिथिकल अमीर अंकल जिनके बारे में वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलता है। अब यहाँ पे भी जो मिथिकल है वो काल्पनिक है, यानी जो एक उसका जो काल्पनिक अंकल है, काल्पनिक उसका चाचा है जिसके बारे में बहुत ही अमीरी से बढ़ा चढ़ा के वो बोलता है। अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 3 की तरफ, जो कि है ग्रामर। टेंसेस, द सिंपल प्रेजेंट, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड द सिंपल पास्ट। अब ये जो निम्न वाक्य जो है उनको ध्यान से देखना है। पहला है, मोहन गेट्स अप एट 6 o'clock, ही ऑलवेज शेव्स बिफोर ब्रेकफास्ट, मिस्टर लाल स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज संडेज विद द गुप्तास, दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। मतलब है, मोहन यूजुअली मतलब जनरली मतलब हमेशा आमतौर से 6 बजे उठता है। वो हमेशा शेव करता है ब्रेकफास्ट करने से पहले, सुबह का नाश्ता करने से पहले। मिस्टर लाल जो है वो अपने अधिकतर संडेज गुप्तास के साथ बिताते हैं, यानी अपना रविवार जो है वो गुप्तास के साथ बिताते हैं, और फिर वो लोग दोपहर में फुटबॉल खेलते हैं। अब अगले सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं, बी पार्ट पे। एट दिस मोमेंट यू आर रीडिंग दिस सेंटेंस, इस समय आप ये वाक्य पढ़ रहे हो। सेकेंड, आई एम राइटिंग नाउ, मैं अभी लिख रहा हूँ। थर्ड, द टीचर इज टॉकिंग नाउ, जो टीचर है अध्यापक है वो भी बात कर रही है। द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग नाउ, जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी सुन रहे हैं। और इट इज रेनिंग नाउ, बारिश हो रही है अभी। सी का पहला, मोहन वेंट टू लंडन इन 2004, मोहन लंडन गया 2004 में। दे बॉट अ हाउस इन दिल्ली 2 years ago, उन्होंने दिल्ली में घर खरीदा 2 साल पहले। दे वेंट टू अ मूवी लास्ट संडे, वो पिछले संडे यानी पिछले रविवार मूवी देखने गए। द सेंटेंसेस इन ए डिनोट इवेंट्स दैट हैपन यूजुअली। The verbs in the sentences in A are said to be in the simple present tense. This refers to the form of the verb. The simple present tense is used to show something that happens habitually, every day, every month, every year, in general, as a matter of course. अब यहाँ पे जो आपका सेक्शन ए था, वहाँ जो शब्द जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जो वाक्य दिए हुए हैं, वो वाक्य हैं जो कि आमतौर पे होते हैं। तो ये जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि आपकी हैबिट में होता है, जो आमतौर पे जो होता है, जो आप करते हैं, जो हो सकता है हर दिन हो, हर महीने हो, हर साल हो या हर समय हो। तो जैसे कि इसमें सेंटेंस था, मोहन गेट्स अप एट 6 in the morning, तो यहाँ मोहन जो है वो यूजुअली आमतौर पे 6 बजे उठता है। इसके आगे है, शी यूजुअली सिंग्स इन अ बाथ, वो नहाते तौर पे यूजुअली यानी आमतौर पे गाना गाती है। ऑन संडेज दे गो फॉर आउटिंग, रविवार को वो बाहर घूमने जाते हैं, ये भी वो जाते हैं मतलब ये भी आमतौर पे वो करते हैं। इट जनरली रेन्स इन द जून, जून के महीने में जनरली बारिश होती है, आमतौर पे बारिश होती है। रोजेस ब्लूम इन समर, जो गुलाब हैं वो गर्मी में खिलते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूरज है वो ईस्ट में उगता है, पूर्व की दिशा में निकलता है। इन सम स्पेशल कॉन्टेक्स्ट द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म इज यूज्ड टू डिनोट समथिंग दैट इज हैपनिंग नाउ। अब कुछ केसेस में, कुछ कॉन्टेक्स्ट में ऐसा भी होता है जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम यूज करते हैं, का इस्तेमाल करते हैं, जो अभी हो रहा है, फिलहाल हो रहा है, उसको बताने में। अब आगे बढ़ते हैं। द सेंटेंसेस इन बी शो एन एक्शन विच इज इन प्रोग्रेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। अब जो सेक्शन बी में जो आपने सेंटेंसेस पढ़े, वो जो है वो उस कार्य की बात करते हैं, उस एक्शन की बात करते हैं जो फिलहाल हो रहा है। ऑल द वर्ब्स इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड रीडिंग, राइटिंग, टॉकिंग, लिसनिंग एक्सेट्रा, ऑल द वर्ब्स आर प्रीसीडेड बाय अ फॉर्म ऑफ बी, आर रीडिंग, आई एम राइटिंग, इज टॉकिंग, आर लिसनिंग, द फॉर्म ऑफ बी इज अ हेल्पिंग वर्ब, इज अकंपनीड बाय अ वर्ब एंडिंग इन आईएनजी। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं वो अधिकतर आईएनजी से ही खत्म होते हैं, जैसे कि रीडिंग उसमें आ रहा है आईएनजी, राइटिंग, लिसनिंग, टॉकिंग, सब में आईएनजी एंड में आ रहा है, यानी ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जो अभी हो रहे हैं। और ये जो वर्ब्स होते हैं इनका शुरुआत जो होते हैं वो बी फॉर्म के से शुरुआत करते हैं, ये जैसे आर रीडिंग, एम राइटिंग, इज टॉकिंग, आर लिसनिंग, तो यहाँ आर, एम, इज, ये जो है बी फॉर्म्स हैं, यानी ये जो बी फॉर्म है ये हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके आगे आते हैं. द वर्ब ग्रुप दैट इज द हेल्पिंग वर्ब बी प्लस द मेन वर्ब एंडिंग एन आई एन जी इज कॉल्ड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म. अब इन्हीं दोनों को मिला के आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म बनता है. The present continuous, like the simple present, can show a habitual activity. But when the present continuous form is used to show habitual activity, it carries out an overtone of some emotion. My scooter is always breaking down, shows irritation. My scooter always breaks down, just a statement. Mahesh is often coming late to class by these days, shows emotion, irritation, surprise, etc. Mahesh always comes late to the class, just a statement. अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो भी सिंपल प्रेजेंट की तरह कोई एक्टिविटी जो आमतौर पे चलने वाली एक्टिविटी है हो सकता है उसको दर्शाए. लेकिन जब एक प्रेजेंट कंटिन्यूस किसी आमतौर पे होने वाली एक्टिविटी या कार्य को दर्शाता है तो वो उसके साथ साथ कोई इमोशन कोई भावनाएं भी दिखाता है. जैसे कि है माई स्कूटर इज ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन. यहाँ पे इरिटेशन शो हो रही है कि उसका जो स्कूटर है वो हमेशा खराब ही होते रहता है तो उसकी चिड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है. और फिर वही जो सेंटेंस है महेश इज ऑफन कमिंग लेट टू क्लास दीस डेज. महेश जो है वो आजकल क्लास में हमेशा देर से आता है. यहाँ पे जो है भावना इरिटेशन और सरप्राइज दोनों की शो हो रही है. उसको चिढ़ भी हो रही है और वो थोड़ा आश्चर्यचकित भी हो रहा है इस बात से. और वहीं महेश ऑलवेज कम्स लेट टू क्लास होता तो यानी महेश हमेशा क्लास में लेट ही आता है तो एक स्टेटमेंट ही रह जाता. या फिर माय स्कूटर ऑलवेज ब्रेक्स डाउन तो वो भी एक स्टेटमेंट रह जाता कि मेरा जो स्कूटर है वो हमेशा टूट ही जाता है खराब हो जाता है. नोट दैट इन सेंटेंसेस लाइक दोस विच एक्सप्रेस वेल रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द यूनिवर्सल टाइम द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विदाउट एडवर्बियल्स लाइक ऑलवेज जनरली एक्सेट्रा. अब यहाँ ये ध्यान दीजिए कि जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो ऐसे वाक्य होते हैं जो कि ऐसी चीजें दिखाते हैं जो कि हमेशा होती हैं जो यूनिवर्सल फैक्ट है जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट जो कि एक चीज है जो कि बिल्कुल फिक्स है जो कि हर जगह होती है और होना ही है. वो सब जो है वो जनरली और ऑलवेज के बगैर भी इस्तेमाल की जा सकती है. अभी सबको पता है कि सूरज जो है वो ईस्ट में उगता है तो उसमें हम ये नहीं लगाते हैं कि जो सन है ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट. नहीं, यहाँ ऑलवेज लगाने की जरूरत नहीं है. यहाँ हम सिंपली लिखते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट. आगे बढ़ते हैं. देर आर मेनी वर्ब्स दैट आर जनरली नॉट यूज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ऑफन दे डिनोट अ स्टेट ऑफ परसेप्शन और कॉग्निशन. दीज इंक्लूड अबहोर अब्सकॉन्ड एग्री एस्टॉनिश बिलीव बी बिलोंग टू केयर कंसर्न कंसिडर एज इन वी कंसिडर हिम अ गुड स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ कंटेन कॉज डिपेंड ऑन डिजर्व डिजायर डिटेस्ट डिस्पाइस डिफर डिसएग्री डिसबिलीव डिस्ट्रस्ट डिसप्लीज डिसलाइक डाउट इक्वल फील मेल्टिंग कंडीशन Fit, forget, forgive, guess, hate, have, hear, hold, imagine, impress, include, intend, involve. मतलब ये सारे आगे आपके examples दिए हुए हैं उसके कि ऐसे काफी सारे शब्द हैं जो कि generally present continuous में use नहीं होते लेकिन उसका जो state होता है और जो उसका जो perception होता है जो अनुभूति होती है वो ज्यादातर आमतौर पे एक state denote करती है. और यहाँ कई सारे example दिए हुए हैं जैसे कि एग्री हो गया बिलीव हो गया केयर हो गया ये सब जो है ये एक अनुभूति दर्शा रही है एक स्टेट में. फिर आगे बढ़ते हैं. सम ऑफ दीज आर यूज्ड इन द कंटिन्यूअस टेंस देन दे हैव अ मीनिंग अदर देन स्टेट ऑफ परसेप्शन. अब जब इन जो ये जो वर्ड्स दिए हैं जो एग्जांपल्स दिए हैं उनको जब हम कंटिन्यूअस टेंस में डालते हैं तो फिर उनका जो मतलब होता है वो स्टेट और परसेप्शन से अलग हो जाती है. जैसे कि शी इज सीइंग मी टुमारो वो कल मुझे देख रही है. यहाँ पे ये हो सकता था शी विल मीट मी टुमारो शी इज मीटिंग मी टुमारो बट इसका जो सी है वो सीइंग हो गया. शी इज सीइंग मी टुमारो ही इज हैविंग अ नाइस टाइम वो एक अच्छा समय बिता रहा है गुजार रहा है एक्सपीरियंस कर रहा है. वर्ब्स ऑफ बॉडी सेंसेशन एच फील हर्ट एच एक्सेट्रा कैन बी यूज ईदर इन द सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव विद नो डिफरेंस इन मीनिंग. अब जो शब्द होते हैं जो कि ऐसे बॉडीली सेंसेशन बताते हैं जो फीलिंग बताते हैं आपकी बॉडी में जैसे कोई दर्द हुआ या कहीं चोट लगी या कहीं खुजली हो रही है उन सबको हम सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यूज कर सकते हैं बिना मतलब को बदले. द सेंटेंसेज इन सी एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन डिनोट इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट. जो सी में जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपके डिनोट करता है उन इवेंट्स को उन उत्सवों को जो कि पास्ट में हुए हैं पहले हो चुके हैं. लुक एट द फॉर्म ऑफ द वर्ब went, bought. They are the past forms of the verb go and buy. The past form of the verb is called a simple past tense form. अब यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं went और bought ये जो है ये go और buy के past tense में है simple past tense. तो इसी बदलाव को go से went में buy से bought में मतलब जैसे sentence हो सकता था आई गो टू स्कूल और आई वेंट टू स्कूल. आई गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जाती हूँ, आई वेंट टू स्कूल मतलब मैं स्कूल गई थी. फिर अगला बाय और बॉट का हो सकता है, आई बाय ग्रोसरीज मैं सामान खरीदती हूँ, आई बॉट ग्रोसरीज मैंने सामान खरीदा था. तो यहाँ खरीदती हूँ उसे जो खरीदा हुआ है हुआ उसी को हम सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. नोटिस दैट द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज विद अ पास्ट टाइम एक्सप्रेशन लाइक इन 2000 टू इयर्स अगो लास्ट संडे. इफ द सिंपल पास्ट इज यूज विद एडवर्ब्स और एडवर्बियल्स लाइक ऑफन ऑलवेज एवरीडे एक्सेट्रा इट शोज अ हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट. अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, आई ऑलवेज फिनिश माई वर्क ऑन टाइम. अब यहाँ दिया है कि सिंपल पास्ट फॉर्म जो होता है वो बहुत सारे इसमें ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो कि इन 2000 टू इयर्स अगो लास्ट संडे मतलब दो साल पहले या 2004 में या पिछले रविवार को, ये जब ऐसी चीजें जब सेंटेंस में आए तब वो सिंपल पास्ट होते हैं. और इसके साथ साथ सिंपल पास्ट ऑलवेज ऑफन एवरीडे वाले सेंटेंसेस के साथ भी बन सकता है, हमेशा लगातार या हर दिन ऐसे शब्दों के साथ भी बनाया जा सकता है. जिसका एग्जाम्पल दिया है, और आई ऑलवेज फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, मैं अपना काम हमेशा टाइम पे फिनिश कर लेती थी. तो ये जो है ये सिंपल पास्ट टेंस का हैबिचुअल यानी रिपीट यानी आमतौर पे लगातार होने जाए वाला सेंटेंस फॉर्म हुआ सिंपल पास्ट टेंस में. अब एक्सरसाइज है, पहली फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स, यूज द सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और द सिंपल पास्ट. अब यहाँ जो आपने तीन फॉर्म्स पढ़े सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट, इनका इस्तेमाल करके ये जो नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनके मैंने जो ब्लैंक है उनको भरना है. पहला है आई डैश अ बियर्ड नाउ, तो इसका हो जाएगा ब्रैकेट में ग्रो. अब ग्रो को हम इसमें चेंज करेंगे ग्रू में, आई ग्रो अ बियर्ड नाउ मैंने अब एक दाढ़ी उगा ली. आई डैश टू वाइंड द क्लॉक लास्ट नाइट, ब्रैकेट में फॉरगेट ये फॉरगॉट हो जाएगा. आई फॉरगॉट टू वाइंड द क्लॉक लास्ट नाइट, पिछली रात मैं घड़ी को वाइंड करना भूल गया. फिर है एवरी ईयर ही स्पेंड हिज हॉलीडेज इन कश्मीर, अब यहाँ पे स्पेंड स्पेंट हो जाएगा यानी बिताया, टी लग जाएगा डी की जगह. हर साल वो अपनी छुट्टियां कश्मीर में बिताता था. इट डैश टेक योर अम्ब्रेला, अब यहाँ हो जाएगा इट इज रेनिंग टेक योर अम्ब्रेला, बारिश हो रही है अपना छाता ले लो. तो रेन रेनिंग इज रेनिंग में बदल जाएगा कंटिन्यूस में. कीप क्वाइट वी डैश टू द म्यूजिक, यहाँ पे लिसन जो है वो लिसनिंग में बन जाएगा, ये भी कंटिन्यूस रहेगा. कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग टू द म्यूजिक, दैट सिली बॉय ऑलवेज डैश स्टूपिड रिमार्क्स, अब यहाँ पे जो मेक है वो मेक्स बन जाएगा. दैट सिली बॉय, जो सिली बॉय है वो हमेशा स्टूपिड रिमार्क्स बनाता है, दैट सिली बॉय ऑलवेज मेक्स स्टूपिड रिमार्क्स. शी डैश कैट्स, शी हेट्स कैट्स, ये भी आपका प्रेजेंट टेंस में है. She hates cats मतलब उसे बिल्लियों से नफरत है, यहाँ पे हेट पे एस लग जाएगा, हेट से जाएगा. My friend dashed to see me yesterday, ब्रैकेट में कम, अब ये yesterday पास्ट की बात हो रही है तो सिंपल पास्ट टेंस में आ जाएगा और कम जो है वो केम बन जाएगा. My friend came to see me yesterday, मेरा दोस्त मुझे कल देखने आया. Who dashed America, अब यहाँ जो discover है वो discovered हो जाएगा, ये भी पास्ट में जाएगा. Who discovered America, अमेरिका को किसने खोजा. उसके बाद है व्हाट अ नॉइस, व्हाट ऑन अर्थ डैश, व्हाट अ नॉइस कैसी आवाज है, कैसा शोर है. व्हाट ऑन अर्थ डैश और ब्रैकेट में हैपन, अब हैपन जो है वो हैपेंड बन जाएगा क्योंकि यहाँ भी पास्ट है, तो हो जाएगा व्हाट अ नॉइस व्हाट ऑन अर्थ हैपेंड, कैसा शोर है आखिर धरती पे ऐसा क्या हुआ. अब अगली है सेकेंड लास्ट है एक्टिविटी 4 स्पीच एक्टिविटी. If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty that nature can bestow, dash, I would point to India, organize a symposium on the theme stated in the lines. अब यहाँ पे जो है आपका ये पूरा लंबा सा आपके चैप्टर का ही एक पैराग्राफ दिया हुआ है. If I were to look, जो ये आपका जो सेंटेंस है ये आपके what India can teach us में दिया हुआ है और ये मैक्स मुलर की लाइन्स है. अब इस पे आपको क्या करना है, ये जो लाइन्स है इसके थीम पे आपको एक सिंपोजियम बनाना है, एक कॉन्फ्रेंस करनी है यानी एक सम्मेलन करना है. तो ये आप अपनी क्लास में अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर सकते हैं. फिर अगली आखिरी एक्टिविटी है कंपोजिशन. इन दिस एसे मैक्स मुलर डिस्क्राइब्स हाउ द वर्ल्ड ओज अ लॉट टू इंडिया, प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ इंडियाज कंट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड. अब इस एसे में मैक्स मुलर बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे जो बाकी के जो देश है वो इंडिया को बहुत कुछ ओ करते हैं यानी भारत के बहुत ही आभारी हैं। तो अब आपको ऐसी ही चीजों की कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनानी है कि भारत का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान रहा है बाकी की दुनिया के लिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने पिछली ऑडियो में करी थी और एक्सरसाइज हमने सारी इस ऑडियो में कर ली। आई होप आप लोगों को सब समझ आया होगा। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।